आस्था संजना को गुस्से से फुंकारते हुए बोली, तुम अपनी नफरत में इतनी डूब गई संजना कि तुम्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आया। तुमने अपनी इसी नफरत में अपनी इज्जत तक गंवा दी। सच कहूं तो तुम्हारी जितनी बेबस और लाचार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और सच बताऊं, मुझे तुमसे अब भी कोई नफरत महसूस नहीं हो रही, सिर्फ तुम पर तरस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तरस। ये कहते हुए आस्था की नजरें सीधे संजना पर टिकी हुई थीं, तेज, गहरी और सच्चाई से भरी। फिर वो मुड़ी और नानी माँ के गले लगकर बोली, हम जानते हैं नानी माँ, हमारी मौत का ख्याल आते ही आपकी सांसें रुक जाती हैं और अब आप हमारे बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि हम आपको सारा सच बता पाते, हम उस स्थिति में ही नहीं थे। तभी आकाश और सुमित हैरानी से अरमान के पास आए और बोले, सम्राट को हमने बहुत मारा, उसका हाथ भी लगभग बेकार कर दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अभी तक नहीं गई है। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब है, जैसे उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हो। ये सुनते ही अरमान की आंखों में एक गहरी सोच उभरी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तुरंत कहा, अभी इसी वक्त सब लोग यहां से बाहर निकलो। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सबने तुरंत सम्राट, राजवीर और संजना को उठाया और वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही सब बाहर पहुंचे, सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। वो अरमान को घूर कर देखने लगा। अरमान उसके पास गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी सोच कितनी गंदी और खतरनाक हो सकती है। तुमने पहले से ही कुछ न कुछ प्लान जरूर किया होगा और मुझे इसका पूरा अंदाजा है। वहीं राजवीर अब कुछ भी बोलने या समझवे की हालत में नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा झटका यही था कि नैना माथुर का नाम पूरी तरह साफ हो चुका था। जिस औरत को उसने दुनिया की नज़्ज़ों में गिरा दिया था, वही आज पूरी तरह बेदाग साबित हो चुकी थी। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। तभी अबीर सिंह राठौर आगे आया और बोला, अब इन दोनों का क्या करना है, यहीं खत्म कर दें या जिंदा छोड़ें। अबीर की बातें सुनकर सभी एक पल के लिए सोच में पड़ गए थे, लेकिन तुरंत ही आहान ने अरमान से सवाल किया, भैया आप हमें अचानक बाहर क्यों ले आए, हम इन्हें अंदर ही खत्म कर सकते थे। आस्था ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, नहीं, अगर हमें इनकी जान लेनी होती तो हम कब का गोली मारकर इन्हें खत्म कर चुके होते। वैसे भी एक हाथ खो देने के बाद ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे और सम्राट का हाल तो तुम देख ही चुके हो, लेकिन अभी नहीं, इन्हें जिंदा रहना होगा। उसकी आंखों में ठंडी आग जल रही थी। ये हमारे परिवार को बदनाम करना चाहते थे ना, अभी अपनी आंखों से हमारे परिवार की खुशियां देखेंगे और फिर इन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहते हुए आस्था ने एक एक कर दोनों की ओर देखा और वहां मौजूद हर इंसान समझ चुका था, अब असली सजा शुरू होने वाली है। तभी तक आखवान बोला था, लेकिन भाभी आपने जो भी सजा देनी थी आप वहीं पर उसे मारकर फेंक सकते थे, फिर इस तरह से इन्हें यहाँ क्यों ले आए। तभी अरमान ने आखवान को देखा और कहा था, केवल कुछ सेकंड रुको, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अरमान ने डार्क वॉइस के साथ कहा। जैसे ही अरमान ने ये कहा, पूरी तरह से आखवान शांत हो गया था। वैसे भी अरमान के फैसले पर वो तो क्या कोई भी सवाल नहीं उठा सकता था। वहीं ध्रुव ने आहान का कंधा थपथपाकर कहा था, कितनी बार कहा है ज्यादा मत बोला कर, जितना हो सके अपने मुंह को शांत रखा कर, अब देख अरमान भाई कुछ सेकंड में तुझे जवाब देने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जवाब पूरे तरीके से धूमधड़ाके वाला खतरनाक होगा। अब ये सुनकर आहान थोड़ा भड़क कर बोला था, लेकिन यार अच्छी खासी जगह थी, उसी जगह पर मारकर दफना देते तो किसी को पता भी नहीं चलता और उसके बाद सीधे बम से उस जगह को उड़ा देते। जैसे ही आहान ने ये कहा, उसके कहते ही अचानक वो पूरी जगह भयानक ब्लास्ट से जलने लगी थी, पूरी तरह से वहां धमाके हो चुके थे। वो सब देखकर आहान हैरान होकर बोला, ये क्या हुआ भाई, मैं तो मजाक में ही बोल रहा था कि इस जगह को बम से उड़ा देंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से बम लगे हुए थे, इस जगह को पहले से ही एक्सप्लोसिव जोन बना दिया गया था। तभी अरमान बोला था, क्योंकि सम्राट के चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हो रही थी, उसे लग रहा था कि वो तो मरेगा ही, साथ ही साथ अरमान सिंघानिया के पूरे परिवार को भी लेकर मरेगा, यही एक कारण था कि वो अपनी मौत का भी जश्न बना रहा था और इसीलिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हो रही थी। लेकिन अरमान अच्छी तरह से समझ चुका था कि सम्राट अपने सनकपन में कहां से कहां तक जा सकता है और क्या से क्या कर सकता है, इसीलिए उसने तुरंत ही दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फटाफट सबको बाहर जाने का आदेश दिया। लेकिन जब अरमान सबको बाहर लेकर आ गया था तो आप सबको सारी कहानी समझ में आ चुकी थी कि असल में उन लोगों का क्या प्लान था। फिलहाल अब सभी लोग एक साथ अपने अपने जोड़ों में खड़े हुए थे। मनोज जी प्रियंका और नानी माँ के साथ खड़े थे, प्रियंका के साथ साथ आस्था थी और अरमान उसके साथ खड़ा था, राधिका सुमित के साथ, वंशिका ध्रुव के साथ और रौनक आह्वान के साथ खड़े थे। वहीं आकाश और अबीर सिंह राठौर सम्राट और राजवीर के साथ खड़े हुए थे और तब तक उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी टीम भी पहुंच चुकी थी। तभी आस्था ने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर कहा था, इन दोनों को लेकर सिंघानिया मेंशन चलो, इनका हिसाब किताब वहीं होगा जहां इनके पापों का असली फैसला होगा। तभी आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान एक दूसरे को देखते हुए तुरंत अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, ये क्या अरमान भाई, आप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब आपने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। हमने आपसे कहा था ना कि आप कोई भी प्लान अकेले नहीं बनाएंगे, आपके हर प्लान में, हर एक सिचुएशन में हम लोग आपके साथ हैं। तो फिर आपने ऐसा कैसे कर दिया? वहीं आहान थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला था कि अरमान भैया, आपको हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्या आपने हमें इस लायक ही नहीं समझा कि हम आपकी कोई मदद कर पाते या फिर आपके लिए कुछ भी कर पाते? आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया? कम से कम आपको हमें कोई हिंट तो देना चाहिए था। आज तक हमने हर अच्छा बुरा काम साथ में किया है, लेकिन आज आपने हमें एकदम से पराया कर दिया। ऐसा क्यों भैया? ये कहते हुए आहान काफी इमोशनल हो गया था और उसके बाद कुछ याद आते ही वो तुरंत बोला, और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि सम्राट और राजवीर इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। क्या इन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि आपकी यादें वापस आ सकती हैं? ये संजना के भरा से कैसे रह सकते हैं? जैसे ही आहान ने ये सवाल किया, सब लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। वहीं सबको मुंह खोलकर अपनी ओर इस तरह से देखकर आहवान हैरानी से भर गया और वहीं ठीक उसी वक्त ध्रुव आहान के पास गया और उसकी ओर देखकर बोला था, वापे आहान सिंघानिया, काफी शातिर हो गए हो, क्या बेहतरीन सवाल किया है तुमने। वहीं आहान थोड़ा झेम कर बोला, आप सब लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? मैंने तो बस एक जेन्युइन सवाल किया है। भाई आप लोग इस बारे में थोड़ा सोचो, अगर अरमान भाई ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है तो राजवीर जिंदल और सम्राट को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? अरे आखिरकार राजवीर जिंदल और सम्राट जैसे खतरनाक और स्मार्ट इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। भले ही वो लोग एक नंबर के साइको और पागल हों, लेकिन इस तरह के जीनियस, ड्रग्स बनाना, किसी की यादों के साथ खेलना, इतने खतरनाक प्लान तैयार करना, ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये तो राजवीर जिंदल जैसा इंसान ही कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक नंबर का सनकी और पागल है। जैसे ही आहान ने अपनी बात क्लियर की, अरमान और बाकी सब वाकई उसे तारीफ भरी नजरों से देखने लगे थे।
वहीं सुमित ने सीधा जाकर आहान के कंधे पर थपकी दी और कहा था, वाकई हमें तो लगता था कि तुम में दिमाग की बहुत ही ज्यादा कमी है, लेकिन आहान सिंघानिया, तुम तो काफी ज्यादा जीनियस निकले। जैसे ही सभी ने इस तरह से आहान की तारीफ की, आहान अपना कॉलर ऊंचा करके रौनक की ओर देखने लगा था, मानो आंखों ही आंखों में उससे कह रहा हो, देखा तुम्हारे पति की कितनी ज्यादा तारीफ हो रही है। तभी आस्था हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, इसका जवाब हम आपको देंगे आहान भैया। राजवीर जैसे स्मार्ट इंसान को भनक वो इसलिए नहीं लगी आहान, क्योंकि हमने राजवीर जिंदल और सम्राट को इस बात का पता लगने ही नहीं दिया। हमने सबके सामने हमेशा अरमान जी से झगड़ा किया, नफरत करने का दिखावा किया, ताकि उन्हें बिल्कुल भी शक ना हो। और जिस वक्त अरमान जी और मैं बालकनी में थे, उसी वक्त हमें एहसास हो गया था कि कोई हमें देख रहा है। तभी हम समझ गए थे कि हमें आगे क्या करना है, और शायद राजवीर को इस बात का अंदेशा पहले ही हो गया था कि अरमान जी की यादें वापस आ गई हैं। इसीलिए जब अरमान जी यहाँ आए, तब उन्होंने एक अलग तरह का ड्रग्स उन्हें दिया, जिससे राजवीर उन्हें जो कुछ दिखाता अरमान जी वही देखते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरमान जी की यादें हैं या नहीं हैं। लेकिन उससे पहले ही मैं प्रोफेसर प्रशांत से मिल चुकी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस बात का पूरा अंदाजा था कि अब उनका अगला टारगेट क्या होगा। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि राजवीर जिंदल इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जो अपने प्लान बी के बिना कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करे। इसीलिए पहले ही अरमान जी को अनोखा ड्रग दिया था। ये कोई आम ड्रग दवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा केमिकल था जो शरीर के अंदर जाकर उसकी पूरी प्रणाली को ही बदल देता था। जैसे ही वो ड्रग अरमान के शरीर में गया, धीरे धीरे उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो ड्रग सीधे अरमान जी के खून में घुलकर उसके शरीर के हर हिस्से तक फैल गया था। उसने अरमान जी के शरीर के अंदर मौजूद उन सभी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जिन पर आमतौर पर दवाइयां असर करती हैं। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि अरमान जी के शरीर में चाहे कितनी भी ताकतवर दवाई क्यों ना दी जाए, उसका कोई भी असर नहीं होने वाला था। उस ड्रग ने अरमान जी के इम्यून सिस्टम को भी इस तरह से बदल दिया था कि अब उसका शरीर हर बाहरी दवा को दुश्मन समझकर तुरंत नष्ट कर देता था। मतलब कोई भी इलाज, कोई भी इंजेक्शन, सब बेकार हो चुका था। क्योंकि अब अरमान जी को किसी भी तरह का कोई ड्रग्स दिया जाता तो पूरे 24 घंटे तक उन पर किसी भी ड्रग का असर नहीं होता। अब जैसे ही आस्था ने पूरी बात रिवील की, सब हक्का बक्का रह गए थे। वहीं आहान एक बार फिर बोला था, लेकिन भाभी वहां बॉडीगार्ड और वसुंधरा आंटी वीर कैसे पहुंचे? उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? तब जल्दी से आस्था बोली थी, जैसे ही हमने सभी जामर बंद किए, वीर को हमारी लोकेशन मिल गई और अरमान जी के सिग्नल भेजते ही वीर इस लोकेशन पर अरमान जी के अरेंज किए गए बॉडीगार्ड्स को लेकर वहां आ गए थे। जैसे ही ये सब बताया गया, सभी लोग हैरानी से अरमान को देखने लगे थे। तभी नानीमा सबकी ओर देखकर बोली थी, बेटा ये सारी बातें तो घर पर जाकर भी हो सकती हैं, फिर हम यहाँ खड़े होकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और शायद आप लोग भूल रहे हो बेटा, और वहां पर रश्मि बेटी मौजूद है, हो सकता है कि रश्मि घबरा भी जाए। हम इस सिचुएशन में रश्मि बेटी को बिल्कुल भी किसी तरह की टेंशन में नहीं डाल सकते, इसीलिए हमें चलना होगा।
तभी आस्था भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली थी, आप ठीक कह रही हैं नानीमा, हम लोगों को यहाँ से अब घर के लिए निकलना चाहिए और इस सम्राट और राजवीर को भी घर लेकर चलना चाहिए। अभी भी राजवीर और सम्राट एक साथ बॉडीगार्ड की कैद में थे, हालांकि पूरी तरह से दोनों अनकॉन्शियस स्थिति में थे। अब जैसे ही आस्था ने उन्हें घर लेकर जाने की बात कही, अविनाश जल्दी से बोला था, और गौरी एक बार फिर सोच लो, क्या तुम वाकई चाहती हो कि राजवीर, जिंदल और सम्राट तुम्हारे साथ वहां जाएं? उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अभी के अभी उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और किसी भी तरह का लफड़ा नहीं पालते। तभी आस्था कुछ सोचते हुए बोली थी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है भैया, उनकी जान तो जाएगी लेकिन अभी नहीं। उनकी जान जाने का भी सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि उनकी जान लेने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हमें तो लगा था कि उसने इस दुनिया में आकर सबसे ज्यादा गलत हमारे साथ किया है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद की है। जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी पूरी तरह से शांत हो गए थे। आस्था के चेहरे की चमक और आत्मविश्वास देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग आस्था से पूछ सके कि आखिरकार आस्था राजवीर और सम्राट के साथ क्या करना चाहती है। फिलहाल अब सभी लोग गाड़ियों में जाकर बैठ गए थे सिंघानिया मेंशन जाने के लिए, लेकिन जब वसुंधरा और वीर अलग गाड़ी में जाकर बैठे तो उसने उम्मीद से अभिमान जी की ओर देखा था। कहीं ना कहीं वसुंधरा को लग रहा था कि शायद अभिमान जी उसे माफ कर देंगे और अपने साथ आने को कहेंगे, लेकिन अभिमान जी ने एक बार फिर से अपना मुंह मोड़ लिया था। कहीं ना कहीं वसुंधरा पूरी तरह से टूटी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके गुनाह ही ऐसे हैं कि चाहकर भी कोई उसे इतनी जल्दी माफ नहीं कर पाएगा। फिलहाल तभी वंशिका और राधिका ने संजना को बेहाल हालत में एक तरफ धकेलते हुए कहा था, लेकिन आस्था, इन सब के बीच इसका तो हमने डिसीजन ही नहीं लिया, आखिरकार इसने हमारे दिलो दिमाग में कितनी नफरत भर दी है, इसके बारे में भी तो कुछ सोचो, इसका क्या करना है, क्या इसे भी राजवीर और सम्राट की तरह मेंशन लेकर चले, और आखिरकार इसे लेकर जाने का मतलब क्या है? राधिका थोड़ा गुस्से में बोली थी, ये तो मुझे इतनी बड़ी चुड़ैल लगती है कि मेरा दिल करता है इसके सारे बाल मुंडवाकर इसे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमा दूं। जैसे ही राधिका ने गुस्से में ये कहा, सब हंस पड़े।